September 21st, 2018, in Dubai, on liberation through sound. So this lecture was based on a seminar given by His Holiness Bhakti Vigyan Swami.
So ye aaj ka Hare Krishna.
Hare Krishna. See whether there's a green light there. Switch the left button off. Press the green button.
Hare Krishna.
आज का ये प्रवचन किसी एक सेमिनार के ऊपर आधारित है जो भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज ने दिया था.
So his seminar was 15 hours long.
ये जो सेमिनार महाराज ने दिया था वो 15 घंटे तक का था.
So this is a very shortened version, a briefy version.
तो आज ये प्रवचन एक उसका एक संक्षिप्त रूप है.
So if you can understand English, you can listen to his complete seminar online.
अगर आप इंग्लिश समझते हैं, सुनते हैं, तो आप उनका सेमिनार डायरेक्ट आप सुन सकते हैं ऑनलाइन.
It is called Liberation by Sound.
और उस सेमिनार का नाम है, शीर्षक है, शब्द से मुक्ति.
So we're going to start with the concept that the whole universe is created by sound.
I'm sorry, Madhya.
Are you ready?
No, repeat the topic as Shabda Dwara Mukti.
Shabda Dwara Mukti.
Okay. Now, are you ready?
Yes.
Oh, right. The whole universe was created by sound.
Ye pura brahmand shabd ki dhwani se hi utpann hua.
This is nicely explained in the third canto, chapter 12, text 47.
दूसरे स्कंद का 12वां अध्याय, तीसरे स्कंद का 12वां अध्याय, चौथा नंबर श्लोक, उसमें ये वर्णन दिया हुआ है.
From sound comes space.
तो शब्द से आकाश तत्व पैदा होता है.
Now, if you don't know how that works, you just have to go onto a street in India.
ये अगर समझना हो तो आप इंडिया के किसी सड़क पे जा सकते हैं.
From sound comes space, yeah. Then from space comes touch.
Space comes?
Touch.
Okay. और ये जो खम उत्पन्न होता है शब्द से, पर खम से स्पर्श उत्पन्न होता है, स्पर्श.
From touch comes gases.
और उस स्पर्श से वायु, अलग अलग प्रकार की गैसेस.
From gases come form.
और उस गैस से फिर रूप प्रकट होता है.
From form comes radiant energy.
और उस रूप से फिर अलग प्रकार की शक्तियां उद्भवित होती हैं.
From radiant energy comes taste.
और उन विभिन्न प्रकार की शक्तियों से, ऊर्जा से स्वाद उत्पन्न होता है.
From taste comes liquids.
और उस स्वाद से फिर द्रव्य उत्पन्न होता है, लिक्विड.
From liquids comes smell.
और उस द्रव्य से फिर सुगंध पैदा होती है.
From smell comes solids.
Comes
solids.
Solids.
और उस गंध से स्थूल जड़ पदार्थ पैदा होता
है.
Can I suggest you turn, look at Mataji?
Yes, because you are so slow.
You look at Mataji and
that you are. I'm only going to be able to give like 1/10 of this class.
Yes, just focus. Take your japamala, put it on around your neck.
Yeah, take off your japa.
Take your japamala, put it around your neck. Focus it properly. Turn to Mataji, and then thanks. Get into the water. Also.
Okay. Okay, and then you look at the audience also. So look at me, then look at the audience.
Oh, like that.
Okay, you can do that. You can do it! Alright, so that was for the big creation. And then there's the secondary creation.
उसके बाद फिर हमारे दूसरे स्तर की जो सृष्टि है,
that was done by Lord Brahma.
वो जो ब्रह्मा जी ने की थी.
For that we turn to Bhagavatam 11:12-17.
11वां स्कंद, 12वां अध्याय, 17 नंबर श्लोक पे आते हैं.
And Vishwanath Chakravarti Thakur gives a very good purport to this verse.
Vishwanath Chakravarti Thakur इसके लिए एक विशेष तात्पर्य लिखते हैं.
How does Brahma create?
ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि की?
The Lord enters the body of Brahma through the Mula Chakra.
भगवान ब्रह्मा के शरीर में मूल चक्र से प्रवेश करते हैं.
And he comes up through the chakras of Lord Brahma.
और ब्रह्मा जी के सब चक्रों से ऊपर उठ करके
And then the sounds come out of the mouth of Lord Brahma.
और शब्द ध्वनि ब्रह्मा के मुखारविंद से निकलती है.
And in this way everything is created.
और ऐसे सब चीजों की उत्पत्ति होती है.
Now the Vedas explain that this creation happens with four kinds of sound.
और वेद बताते हैं हमको कि ये सब सृष्टि चार प्रकार के ध्वनियों से होती है.
So the first sound that comes through the Mula Chakra is called the Paravak. Or transcendental sound.
और जो पहली ध्वनि है जो मूल चक्र से उत्पन्न होती है उसको कहते हैं
हरावक.
हरावक.
As the sound of the Lord moves up through the body of Lord Brahma, it is called pasyantivak.
और जैसे जैसे वो शब्द भगवान का जब ब्रह्मा के चक्रों से ऊपर उठता है तो उसको हरावक.
पश्यंती.
पश्यंती.
Okay.
You see right here.
Right. Okay. Then up to the mind of Lord Brahma as Majjhimavak.
फिर ब्रह्मा के मन तक पहुंचता है उसको ब्रह्मवक.
Go backwards.
And then out through the mouth of Lord Brahma as Vaikarivak.
और फिर वैकारिवक होता है जब ब्रह्मा के मुख तक पहुंचता है.
And in this way, Brahma creates the universe.
और इस प्रकार ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं.
Paravak means transcendental sound.
Paravak का मतलब है आध्यात्मिक शब्द ध्वनि.
Pasyanti means to see.
और पश्यंती का मतलब है देखना.
An overall vision.
और सम्यक दर्शन.
Majjhima is the middle.
मध्यम का मतलब है बीच में.
And Vaikari is action.
अवैकारी का मतलब है क्रिया.
Yes. All right. Now we are also having our own little creation of our own life.
तो हमारे पास भी एक छोटी सी सृष्टि है हमारे जीवन की.
Srila Prabhupada explains that just like Brahma creates the universe by sound, we are creating our own lives by sound.
तो शास्त्रम को बताते हैं जैसे ब्रह्मा जी अपने शब्द से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं उसी प्रकार से हम अपने शब्दों से अपने लिए दुनिया सृष्टि करते हैं.
So more and more the people of the world who are interested in spirituality are understanding the importance of sound in manifesting our lives.
तो जैसे लोग आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हैं वो धीरे धीरे समझ जाते हैं कि हमारे इस ध्वनि का महत्व क्या है हमारे जीवन में.
Good, you're finally in the zone for transcendental. So people are understanding as we speak, as we think, as we hear, that creates our reality.
अब लोग समझने लगे कि जैसे हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, तो उससे reality, वास्तविकता प्रकट होती है.
And the Bhagavad Gita explains how this works.
और भागवतम हमको समझाता है ये कैसे काम करती है.
First there is Paravak, the voice of the soul.
पहले है परवक, आत्मा की ध्वनि.
I want to be the enjoyer.
मैं भोक्ता बनना चाहता हूँ.
I want to control material energy.
मैं भौतिक प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करना चाहता हूँ.
And when the soul has that sound, when the soul has this sound, when the soul makes
this sound, आत्मा के पास ये जब शब्द ये ध्वनि आती है,
it is very powerful.
और बहुत शक्तिशाली होती है.
However, this sound can only be manifest in illusion.
परंतु ये शब्द केवल व्यक्त होता है एक ब्रह्म के रूप में.
So the soul must be covered by the intelligence, by the material intelligence.
तो ये आत्मा है ये भौतिक बुद्धि से आवृत हो जाती है.
And the material intelligence gives a vision how you will be the controller.
और ये भौतिक बुद्धि का आवरण है ये एक दृष्टि पैदा करती है कि हम कैसे नियंत्रण करें.
Just like if you are going to start any business or any project.
जैसे कोई आप धंधा शुरू करते हैं या कोई प्रोजेक्ट.
What do you need first?
आपको क्या चाहिए सबसे पहले.
An idea. Yes, a vision.
तो हमको एक दृष्टि चाहिए एक विचार चाहिए सोच चाहिए आइडिया.
If you have a place, you have money, but you have no vision, you cannot do anything.
आपके पास स्थान है धन है लेकिन अगर आपके पास वो दृष्टि नहीं है.
So the material intelligence gives this vision.
तो ये जो भौतिक बुद्धि है हमको ये दृष्टि प्रदान करती है.
This is how I will enjoy the material world.
हमें इस प्रकार इस भौतिक जगत को मैं भोगूंगा.
That is the voice of Pasyanti Vak.
वही शब्द है पश्यन्ति वाक्.
And then the mind has to evaluate all of our choices in life.
तो हमारा मन जो है फिर वो तुलना करता है हमारी विभिन्न इच्छाओं की.
So I have this particular vision.
मेरे पास ये vision, ये दृष्टि है.
So to achieve my vision, I have to do this and not do this.
और इसको प्राप्त करने के लिए हमें ये करना है, ये नहीं करना है.
That is the voice of the Majjhimavak.
तो ये वो आवाज है मधुरवक की.
मध्यमवक. We all know this voice very well.
हम सब इस आवाज को पहचानते हैं.
This is what is going on in our mind.
ये हमारे मन में चलता रहता है.
Maybe it's in English or Hindi or Tamil or Croatian or something.
किसी भी भाषा में, अंग्रेजी हो, तमिल हो, हिंदी हो.
Like a little monkey jumping around.
बंदर की तरह.
But then if we're going to actually do something.
पर हम जब कुछ करना चाहते हैं.
Prabhupada said first is you have to talk about it.
प्रभुपाद कहते हैं सबसे पहले उसके बारे में आपको बोलना होगा.
So by talking about it, it starts to manifest on the gross platform.
उसके बारे में बात करने से ये स्थूल स्तर पे वो व्यक्त होता है.
And in this way, we create this body, this life, everything.
Now, इस प्रकार इसी विधि से हम इस शरीर को और इस जगत को उत्पन्न करते हैं.
Just like Brahma created the universe.
जैसे ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की थी.
So I'm sure all of you use the GPS.
आप सब लोग GPS का प्रयोग करते होंगे.
So it can give you directions how to go someplace.
आपको वो दिशा बताता है GPS, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है.
And then you can do reverse and go back.
और फिर आप उसको रिवर्स करके वापस का रास्ता भी, वापसी का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं.
I remember my parents got one of the very first GPSs when it was like, you know, $3,000.
माता जी को याद है इनके माता पिता पिताजी वो सबसे पहले GPS बहुत पहले उन्होंने प्राप्त किया था $3,000 का.
So you would program your destination.
तो उसमें आप अपने गंतव्य को, अपनी गति का प्रोग्राम कर सकते हैं.
And then when you wanted, they used to call it Rosie. They gave it a name. They called it Rosie.
और उस यंत्र का नाम था Rosie.
So when they wanted to go home, they would say to the GPS, Rosie, home.
तो जब उनको घर वापस जाना हो तो बोलते थे रोजी मेरे को घर में चलो.
So we have become entangled through sound.
तो हम बंध चुके हैं शब्द से, ध्वनि से.
And the way we are going to become unentangled is also through sound.
और हम इस बंधन से छू सकते हैं वो भी ध्वनि के माध्यम से.
We will reverse this process.
हम इस विधि को हम विपरीत रूप में प्रयोग करेंगे.
So what, the way we are going to reverse this process is we are going to take up spiritual sound.
और हम कैसे इस विपरीत विधि को अपनाएंगे वो है कि हम आध्यात्मिक शब्द का सहारा लेकर.
So it was a material sound that first started our material manifestation.
जैसे कि भौतिक शब्द ध्वनि से हमने भौतिक जगत उत्पन्न किया.
We're going to reverse it by using spiritual sound.
और इसको हम उल्टा करेंगे इस स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ध्वनि के माध्यम से.
So what is that sound?
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे.
तो यही वो ध्वनि विपरीत जा सकते.
So when you're going back home, you're going to go in reverse direction.
तो जब आप घर जा रहे हैं तो विपरीत दिशा में जाएंगे.
So that means we're going to start chanting at the level of Vaikari Vak.
तो हमको जप करना शुरू करना पड़ेगा Vaikari Vak के स्तर से.
That means that our mouth is chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Our mouth.
हमारे जो मुख है वो जप करेगा Hare Krishna, Hare Krishna.
With Vaikari Vak.
Vaikari Vak se.
But the Majjhima Vak is still going, I want to do this, I want to do that. What about this? What about that? What about that?
Lekin jo Madhyama Vak hai, wo kuch aur bolta rehta hai.
And the Pasyantivak is going, here is my vision of enjoyment.
और जो मेरा पश्यंती वक है वो अपना अपनी योजना अलग बनाता है कि ये मेरा वो भविष्य है.
And the Paravak is going, I want to enjoy the material energy.
और जो परावाक है वो हमेशा ये बोलता रहता है कि मैं कैसे इस भौतिक जगत का हम विदोहन करके इसको मैं भोग सकूं.
So by chanting on the level of Vaikari Vak,
तो जब हम वैकारी वक के स्तर पे जब हम जप करते हैं,
the idea is that the mind also starts to chant.
तो इससे धीरे धीरे मन भी जप करना शुरू करता है.
The mind also starts to say, oh, yes, I want to chant this Hare Krishna mantra.
But धीरे धीरे मन भी बोलने लगता है कि yes, हाँ, मैं अब ये मंत्र जप करना चाहता हूँ.
When both the mouth and the mind are chanting,
जब हमारा मुख और हमारा मन दोनों जप करते हैं,
we call that hearing the name.
हम उसको कहते हैं कि नाम सुनना, श्रवण करना.
And when the mouth and the mind are chanting,
जब मन और मुख दोनों जप कर रहे हैं,
it may wake up the intelligence.
तो हमारे बुद्धि को जागृत कर सकते हैं.
And then the intelligence also starts chanting.
तब बुद्धि भी जप करना शुरू करती है.
And then we start having a vision of Krishna's form, qualities, and pastimes.
फिर हमको वो दृश्य मिलता है देखने को कि भगवान के रूप, गुण और लीला.
That wakes up the voice of the soul.
इससे आत्मा की ध्वनि है वो जागृत होती है.
And then the soul starts saying, "Yes, I want to serve Krishna."
तब वो आत्मा बोलने शुरू करती है कि यस, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ.
And then we are home.
तब हम वापस घर पहुंच जाते हैं.
So that is the science of how chanting Hare Krishna brings us back to our original consciousness.
तो ये वो विज्ञान है जिससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार महामंत्र के जब से हम अपने मूल चेतना तक पहुंच सकते हैं.
This process is very nicely explained by Krishna to Uddhava in the 11th canto.
तो ये विधि के बारे में 11वें स्कंद में कृष्ण और उद्धव के बीच में संवाद में विस्तृत वर्णन है.
Krishna explains to Uddhava so many processes.
अब कृष्णा उसमें कई कई प्रकार के विधियों का वर्णन करते हैं.
And Uddhava says, what is the best process?
तो उद्धव पूछे इन सब में से सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है.
And Krishna says, I am manifest as the sound of the Vedas.
तो कृष्णा कहते हैं कि मैं वेदों के शब्द की ध्वनि में प्रकट होता हूँ.
And you might think, how is that an explanation?
आप सोचते होंगे ये किस प्रकार का प्रस्ताव है या एक्सप्लेनेशन है.
But that is the beginning of this explanation of reversing creation through sound.
ये तो शुरुआत है इस विज्ञान का कि कैसे हम शब्द के माध्यम से विपरीत दिशा में जा सकते हैं.
And then Krishna gives an example if people have difficulty understanding.
तब कृष्णा एक उदाहरण देते हैं अगर लोगों को इस समझने में कठिनाई हो तो.
He says, just like if you want to make fire.
जब आप मान लो अग्नि आप प्रकट करना चाहते हो.
You're going to rub two sticks together.
आप दो लकड़ियों को आपस में रगड़ना पड़ेगा.
Of course today we don't do this.
आजकल हम ऐसा नहीं करते.
We just have a lighter.
आजकल लाइटर है हाथ में
matches.
और वो मैच स्टिक होता है.
But just pretend. You can just imagine.
पर आप कल्पना कर सकते हैं.
Because this is the example that Krishna is giving.
क्योंकि ये उदाहरण स्वयं कृष्ण दे रहे हैं.
So he says you're rubbing the wood together.
आप दो लकड़ियों को आपस में रगड़ा रहे हैं.
And then you get a spark.
एक छोटी सी चिंगारी उत्पन्न होती है.
On the spark you pour ghee.
और उस चिंगारी के ऊपर आप घी डालते हैं.
Then the fire blazes.
पर अग्नि धधकती है.
Then the fire blazing, it burns up the wood.
और ये वो अग्नि धधकती है तो उस लकड़े को जलाती है.
So he's explaining the process of reversing creation through sound with this comparison to burning wood.
तो भगवान यहाँ पे हमारी प्रकृति को रिवर्स करने का जो शब्द के माध्यम से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं जहाँ पे उन्होंने ये अग्नि और लकड़ी का उदाहरण दिया.
So when we are first chanting just on the level of Vaikari Vak,
तो हम पहले वैकारिक वक्त के स्तर पे जप करना शुरू करते हैं.
That is like you are rubbing the wood.
वो उस दो लकड़ी के घर्षण के से कम तुलना की जाती है उसकी.
Because when we are chanting only with the mouth,
क्योंकि जब हम केवल मुख से जप करते हैं,
when our mind, our intelligence and soul are not chanting,
जब मेरी मन, मेरा मन और मेरी बुद्धि अब जप नहीं कर रहे हैं,
it is simply hard work.
तो ये बहुत कष्टपूर्वक करना पड़ता है.
It is not very satisfying.
ये संतुष्टि हमको नहीं देती है, बहुत ज्यादा परिश्रम.
It's not very satisfying. And what does it produce? Smoke.
और इसे उत्पन्न क्या होता है? धुआं.
And you're perspiring.
और आप पसीना, आपका पसीना निकलता है. कष्ट.
But then by this hard work, a spark can come.
मगर इस परिश्रम से उस चिंगारी को हम.
What is this spark?
ये चिंगारी क्या है?
It is when the mind also starts to chant.
ये चिंगारी है जब मन भी जप करना शुरू करता है.
And you go, oh, wow, what was that?
तब आप हैरान हो जाते हैं. क्या ये क्या है?
Now many times when the mind also starts to chant,
कई बार जब मन जप करना शुरू करता है,
it can be just a little spark.
एक छोटी सी चिंगारी हो सकती है.
And then it goes out.
फिर वो बुझ जाती है.
So what does Krishna say to do when that spark comes?
तो कृष्णा उद्धव को क्या बताते हैं जब ये चिंगारी जलती है तो?
He says you have to pour ghee.
कृष्णा कहते हैं उसमें घी डालना होता है.
One has to nourish it.
और उसको पोषित करना होता है.
And then the spark starts to become a fire.
तब ये चिंगारी अग्नि का रूप ले लेती है.
Well, then we are chanting with the intelligence.
तब हम अपनी बुद्धि से जप करते हैं.
And start to realize that the name and the Lord are the same.
और तब हम ये समझ पाते हैं कि भगवान और उसके नाम अभिन्न हैं.
As that realization starts to come,
जब ये दर्शन हमको प्राप्त होता है,
in our chanting we can actually see the Lord and His pastimes.
और उस जप करते समय हम भगवान का दर्शन, उनकी लीलाओं का दर्शन करते हैं.
And eventually, in some time, the fire becomes so blazing.
और आगे चल के ये अग्नि इतनी ज्यादा धधक जाती है.
That it burns up the wood that started it.
और उस लकड़े को जला देती है जिससे अग्नि उत्पन्न हुई थी.
In other words, this very fire burns up all of our material attachments and even this subtle body.
एक तरह से हमारे ये अग्नि हमारे जितने भी इच्छाएं हैं उसको जला के खाक कर देती.
And at that time the soul becomes fully awakened.
उस समय या आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है.
So how can we move through these stages?
हम किस प्रकार अलग-अलग स्तरों तक पहुंच सकते हैं?
Now most of us begin our chanting just at the level of Vaikari Vak.
तो हम में से ज्यादातर लोग वैकारी वक्त के स्तर पे ही हम जप करना शुरू करते हैं.
That is expected.
ये हम ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं.
But we should not stay on that platform.
लेकिन हमें उस स्तर पर हमेशा नहीं रहना है.
First of all, it is not satisfying.
पहली बात तो ये उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलती है.
I was talking to one devotee who had stopped chanting japa.
माता जी एक भक्त से बात कर रही थी जिन्होंने जप करना बंद कर दिया था.
And I said, why did you stop?
माता जी ने पूछा तुमने क्यों बंद किया?
He said it became just another job I had to do every day.
उसने कहा ये एक और तरह का काम हो गया है जो हमको रोज करना पड़ रहा है.
At the level of Vaikari Vak, it is like that.
तो वैकारी वक के स्तर पे ये ऐसे ही होता है.
It just becomes some hard mental exercise.
ये एक बहुत कष्टप्रद मानसिक व्यायाम हो जाता है.
And that is not the only problem.
केवल यही एक समस्या नहीं है.
जीवा गोस्वामी gives us some very strong warnings.
जीवा गोस्वामी बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं हमको.
That if we stay on the level of Vaikari Vak chanting,
अगर हम वैकारी वक्त के स्तर पे हमेशा रहें,
if we don't go on to deeper levels of chanting,
और गहराई हम जब की गहराई तक नहीं जाएंगे.
He said we will get five very serious problems.
हमें पांच बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा.
The first is we will become crooked.
पहली चीज़ है हम टेढ़े हो जाएंगे, चौपट हो
जाएंगे. We'll no longer be honest in our devotional behavior.
हमारी ईमानदारी सत्यता खत्म हो जाएगी हमारी भक्ति में.
We may act like we are devotees.
हम प्रदर्शन करेंगे कि हम भक्तों की तरह हैं.
To the public.
लोगों के बीच.
But privately we will be something else.
मगर व्यक्तिगत जीवन में हम कुछ और व्यक्ति होंगे.
We'll be struggling with our faith.
हम अपने श्रद्धा के साथ संघर्ष करते रहेंगे.
And we'll become attached to things that damage our faith.
और हम उन सब चीजों से आसक्त हो जाएंगे जिससे हमारी श्रद्धा नष्ट होती है.
We'll start to become kind of loose about our other spiritual practices.
और हम ठंडे पड़ जाएंगे दूसरे भजन क्रियाओं के मामले में.
Oh, I can eat this. I can watch this.
मैं ये खा सकता हूँ. मैं ये देख सकता हूँ.
And the most interesting.
और बहुत ज़्यादा रुचि वाली बात है.
Is we'll become very proud of our external accomplishments in bhakti.
और हमको ये घमंड आ जाता है जब हम बाहर के जो एक्सटर्नल जो भौतिक प्रगति करते हैं उसका हमें घमंड आ जाता है.
Because internally we're not making progress.
क्योंकि अंदर से हम कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं.
We'll start to look at the external things.
तो फिर हम बाहर की प्रगति को देखते हैं.
How much money did I give or how much money did I collect?
हमने कितना धन कमाया, कितना धन दिया.
How many temples did I build?
हमने कितने मंदिर बनवाए?
How many sticks of incense did I offer?
हमने कितने धूप की कांडियां जलाईं?
How many preparations did I cook?
हमने कितने व्यंजन बनाए भगवान के भोग के लिए?
I was once visiting one temple.
माताजी एक मंदिर में गई थी.
For the first time.
पहली बार.
And one of the brahmacharis came up to me.
एक ब्रह्मचारी माताजी के पास आए.
I don't even know his name.
माताजी को नाम याद नहीं है.
And he started telling me his whole resume, his whole CV in Krishna consciousness.
और वो स्वयं माताजी को बताने लगा अपने क्रिया भजन क्रियाओं के बारे में क्या-क्या वो कर रहा है.
I did this.
मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया.
So this is one of the symptoms of just chanting on the level of Vaikarya.
तो ये एक लक्षण है. इस प्रकार के व्यवहार का लक्षण ये है कि हम वैकारी वक्त में जप कर रहे हैं.
So how are we going to start chanting on the level of Majjhima Vak?
तो हम मध्यम वक्त के स्तर पे कैसे जप करना शुरू करें?
So here Śrīla Prabhupāda gives some nice guidance.
प्रभुपाद हमको यहाँ पे बताते हैं, बहुत अच्छी तरह दिशा देते हैं.
So maybe you could just translate this.
हाँ. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ अंग्रेजी, मैं इसको हिंदी में अनुवाद. As soon as you chant, or let's just chant. जब आप हरे कृष्णा जप करना शुरू करते हैं, आप इमीडिएटली तत्क्षण आप कृष्णा को याद करते हैं, कृष्णा के रूप को याद करते हैं, और कृष्णा के जो युद्धों को जो उन्होंने किया था उसको याद करते हैं. वो अर्जुन के साथ रथ पे बैठे हैं वो याद करते हैं. और जब आप कृष्ण को पढ़ते हैं तो उसकी कुछ लीलाओं को आप याद करते हैं, आपके बुद्धि में इमीडिएटली तुरंत वो लीलाएं आ जाती हैं. और एज सून एज यू चैंट हरे कृष्ण, बाबा हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, ये हमको चाहिए स्मरण. जैसे जप करते हैं तो हम कृष्ण का स्मरण भी होना चाहिए. बट अगर आप केवल एक मशीन के तरह जप कर रहे हैं और उस समय जप करते करते कुछ अनचाही चीजों के बारे में, नॉनसेंस के बारे में सोचते हैं तो ये बेकार हो जाएगा. ये सब जो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा. बट अगर आप इमीडिएटली तत्क्षण अगर कृष्ण का स्मरण करते हैं जब करते समय, तो इसका मतलब आप ध्यान पूर्वक जब कर रहे हैं. क्या दैट मींस डेफिशिएंट इन कृष्ण? इसका मतलब है कि आप कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे थे, यही आपके अंदर खोट थी. तो अगर हम जब जप करना शुरू करते हैं तो हमको तुरंत ही कृष्ण के किसी चित्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. और कृष्ण इतने दयावान हैं, जब वो जो अर्जुन का रथ चलाने के लिए ड्राइवर बन के तैयार हो गए थे और उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया, या कृष्ण जो वनों वन में या बांसुरी बजा रहे थे, अपने लीला कर रहे थे ग्वाल बाबू के साथ यमुना तट पे, और कोई जो वहां पे राक्षस या कोई असुर आता है और वो उसको अवध करते हैं, और वो जो उनके ग्वाल सखा हैं क्या उनका उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं तालियां बजा करके, इस प्रकार का एक दृश्य हमको एंजॉयमेंट चलता रहता है। तो कृष्ण का स्मरण करने में कठिनाई क्या है, कृष्ण बुक में हमारे लिए क्या है, आप पढ़ें और उसको याद करें, ये आपकी सहायता करेगा। ऑलवेज हमेशा कृष्ण भक्ति में, कृष्ण चेतना में रहने के लिए, ये श्रीमद् भागवतम का एक लेक्चर है सैन फ्रांसिस्को 19 मार्च 1967।
So this is one of many similar instructions from Srila Prabhupada.
ये श्रीला प्रभुपाद के कई उपदेशों में से एक है।
How to chant with both the mouth and the mind?
कैसे आप मन और वाणी दोनों से जप करें?
Now we notice if we look up at the different kinds of sound again.
अगर हम देखें अलग-अलग प्रकार के शब्दों को।
The mental voice has to do with knowledge.
जो मन की ध्वनि है वो ज्ञान से लिंक है।
And the intelligence voice has to do with desire.
और इंटेलिजेंस जो बुद्धि की ध्वनि है वो इच्छा से युक्त है।
Krishna says very nicely in Bhagavad Gita chapter 12 text 9.
12वें अध्याय के 9 नंबर श्लोक में भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं।
That the purpose of sadhana bhakti is to develop desire.
तो साधना भक्ति का तात्पर्य है कि हम इच्छा प्रकट करें।
So when this little spark of chanting with the mind comes,
ये जब हमारे मन में छोटी सी चिंगारी जप की उत्पन्न होती है,
instead of just watching it come and go,
अब वो आए और जाए ये ना देखते हुए,
go into it deeply,
आप उसकी गहराई में जाएं,
and in the rest of your time also spend some time hearing about Krishna, thinking about Krishna.
और आपका दूसरा समय भी आप कृष्ण के बारे में सुनना और बोलना, इस पे आप ध्यान।
As Prabhupada was saying, if we are reading about Krishna, then naturally when we are chanting, we'll remember him.
प्रभुपाद कहते हैं अगर आप कृष्ण के बारे में पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, तो जब आप ये स्वाभाविक है जब आप जप करेंगे तो आप कृष्ण का स्मरण ही करेंगे।
So good chanting is not just a chanting time.
तो अच्छे जप का मतलब नहीं कि उस समय केवल अच्छा जप करना।
And today to read and hear about Krishna is very easy.
और आज भगवान के बारे में पढ़ना या सुनना बहुत आसान हो गया है।
You can have all of Prabhupada's books on your phone.
आप प्रभुपाद की सारी पुस्तकें अपने फोन पे ला सकते हैं।
You can listen to them in the car and on the bus.
और अपनी गाड़ी में, बस में जब आप यात्रा कर रहे हैं तो आप उसको सुन सकते हैं।
You can even read them at work before lunch.
आप अपने लंच पे जब आप प्रसाद लेते हैं, लेने से पहले आप उनका पठन कर सकते हैं।
And this is how you pour ghee on that little spark.
ये है वो छोटी सी चिंगारी में घी डालने के समान।
And this will wake up a desire in the intelligence.
और ये आपके बुद्धि में इच्छा प्रकट करेगी।
And at that point, we are actually chanting in a very real and wonderful way.
और उस समय हम जप कर रहे हैं वास्तविक रूप से बहुत अच्छी तरह से।
Because that wakes up a desire that I want to serve Krishna in a particular way.
क्योंकि इससे ये इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं कृष्ण की सेवा अच्छी तरह कैसे करूं।
It starts to wake up the eternal nature of the soul.
और ये हमारा जो शाश्वत स्वभाव है आत्मा का, ये जागृत होता है।
And we want to keep pouring ghee on that fire as well.
और इस प्रकार की अग्नि के ऊपर भी हम और घी डालते हैं।
By continuing throughout our day to hear about and meditate on Krishna.
हम इसको करते हैं पूरा दिन भगवान के बारे में सुनने के और भगवान के बारे में स्मरण या ध्यान रख करके हम ये और ज्यादा अग्नि को घी डालते हैं।
So this is a very easy way to understand how to chant at deeper levels.
तो ये बहुत सरल तरीका है समझने का कि हम किस प्रकार अपने जप को गहराई से समझें।
This understanding can revolutionize your own chanting.
और आप इस प्रकार की जो ज्ञान है आपके जप में बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है।
And I hope that you have found it helpful.
और माता जी आशा कर रही हैं कि ये जो प्रवचन है आपके आपके आपका सहयोग करेगा.
Thank you very much. Hare Krishna.
We have some time for questions.
Okay, so we have what, like 5 minutes?
Okay, you can turn off the.
समय है 5 मिनट. आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो खड़े होकर पूछ सकते हैं.
Lights जला दें. Turn the lights on, please.
Yes, that is your question.
How can you correlate it?
Yes. My first answer is you cannot correlate everything with everything.
इन्होंने पूछा कि इसको हम आपके प्रवचन से कैसे संबंधित कर सकते हैं. लेकिन माता जी ने कहा कि हर चीज को हर चीज के साथ आप जोड़ा नहीं जा सकता.
Sometimes we are looking at things from a different angle.
कभी कभी हम किसी एक वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं.
So far I've identified about 21-22 different ways of describing the progress of bhakti.
माता जी ने कुछ 20-22 अलग अलग प्रकार के भक्ति के अग्रसर होने के तरीके निकाले हैं.
And they're looking at different things.
हम अलग अलग चीजों को देख रहे हैं.
It's like if you're going to talk about how does a baby become an adult.
जैसे आप एक बच्चा वयस्क कैसे बनता है.
You can talk about physical, you can talk about mental, you can talk about social, yeah?
तो आप उसके शारीरिक प्रगति के बारे में, मानसिक बौद्धिक प्रगति के बारे में या सामाजिक प्रगति के बारे में सोच सकते हैं.
And now eventually you become an adult in all those ways, we hope.
और एक बालक जो है वयस्क बनता है इन अलग अलग बातों को लेकर.
We hope. But it doesn't all happen at the same time.
मगर ये सब एक साथ नहीं होते.
So you may be describing progress in one way that doesn't correlate to progress in another way.
आप हो सकता है कि किसी के प्रगति को आप एक दृष्टि से देख रहे हैं लेकिन वही प्रगति दूसरी दृष्टि के से जोड़ा नहीं जा सकता.
So keeping that in mind.
ये चीज को ध्यान में रखते हुए
chanting just on the level of vaikari vak is offensive.
तो वैकारी वक के स्तर पे जप करना इस अनावरण है.
But everybody usually starts like that.
पर सब लोग वहीं से शुरू करते हैं.
The problem is if you stay like that.
मगर समस्या जब वहीं आप रुक जाते हैं.
Just imagine if you were having a conversation with another person in this world.
अब दुनिया में आप किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं.
You're talking with your mouth.
आप अपने मुख से बात कर रहे हैं.
But you're not really paying any attention.
मगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं.
Right? You're just looking at your phone. Yeah. So what did you say? Oh yeah, that's interesting. Okay. And that's chanting at Vaikari Vak.
तो माता जी को तो उदाहरण देकर समझा रही है. आप किसी से जो बातें कर रहे हैं वो आपको कुछ बोल रहा है और अपने फोन को उठा के या किसी वस्तु को आपके आप मग्न हो गए और उसकी आधी बात सुन रहे नहीं, बार बार उससे दोबारा पूछ रहे क्या कहा आपने, अच्छा कहा ये वो. तो ये तरीका जो है बातें करने का तो वैकारी वक्त के स्तर पे जप करने के बराबर.
इवन इन ऑर्डिनरी लाइफ दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल.
साधारण जीवन में भी अगर देखेंगे ये असामान्य है.
So when you start chanting at the level of Madhyama Vak, you are starting the clearing stage.
जब आप वैकारी मध्यम वक पे जब आप जप करना शुरू करते हैं तो वो clearing stage है. जब आप उससे मुक्त हो रहे हैं.
So Madhyama Vak and Pasyanti Vak are both the clearing stage. They're both namabhas.
तो मध्यम वक या पश्यंती वक ये नामाभास से आप जोड़ सकते हैं clearing stage मुक्त होने वाला.
But there are different kinds of sadhana.
मगर अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं.
The Madhyama Vak is regulative sadhana and the Pasyanti Vak is spontaneous sadhana.
Madhyama Vak jo hai wo alag sadhana hai aur Pasyanti Vak jo hai.
Could you repeat that?
Nahi,
Madhyama Vak is by regulation, by rules.
Aap niyamit roop se jo jap karte hain ye Madhyama Vak hai.
And the Pasyanti Vak is from some spontaneous desire.
Aur Pasyanti Vak ka star ka jap jo hai wo spontaneous, matlab aap apne aap man mein aaye aur aap jap karna shuru kare.
And chanting on the level of Paravak is Sudana.
Aur Paravak ke level pe jap karna matlab Sudana.
But you can have a little bit of the later stages that come a little bit when you are at the previous stages.
आप नीचे के स्तर पे जंप करते करते कभी-कभी ऊपर के स्तरों के जंप का अनुभव भी बीच-बीच में होता रहता है.
Just like if you are going to some destination.
आप किसी दिशा में किसी गति पे जाना चाहते हैं.
Even if you are far away.
अगर आप अभी भी अपने मंजिल से दूर हैं.
Sometimes the road turns in such a way that you can see it.
लेकिन कभी-कभी वो रास्ता ऐसे बेंड होता है आप दूर से अपने मंजिल को देख सकते हैं.
Please remember that bhakti yoga is not a mechanical process.
आप हमेशा याद रखें भक्ति योग कोई यांत्रिक कार्य नहीं है.
It is about reestablishing a relationship between two people.
ये दो व्यक्तियों के बीच में अपने संबंध को पुनः स्थापित करने का.
Me and Krishna.
मैं और कृष्णा इन दोनों के संबंध को पुनः स्थापित.
So we can describe that in many scientific ways.
हम इसको अलग-अलग वैज्ञानिक तरीकों से इसको हम साबित कर सकते हैं.
But ultimately, love is a little mysterious.
पर फिर भी जो प्रेम है, वो थोड़ा गोल है विषय है.
Be careful of using too much yen to understand prema.
आप प्रेम को समझने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान का प्रयोग करने की भूल न करें.
Even affection among jivas in this world is very mysterious.
आप जीवों के बीच में भी जो संबंध है क्या ये भी एक मिस्टीरियस क्या बोलेंगे गुप्त ज्ञान है.
रहस्य
रहस्यमय है.
Yeah, you know, this little baby is just born.
छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है.
You don't even know the person.
वो उसको मालूम ही नहीं कि मैं वो कोई व्यक्ति है.
And immediately the mother and father they would die to protect this baby.
लेकिन माता पिता उस समय उसको बचाने के लिए अपनी जान दे देते.
Mysterious.
ये रहस्यमय है.
So we have to end now.
माता जब यहाँ पे वाणी को विराम देना चाहे.
शिव प्रभु की जय.